اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. محسن انسانیت پانچواں چیپٹر ہے ہمارا, اور اس میں آج ہم پڑھیں گے مارکہ بدر کا نتیجہ. پیج ہے 408. اس سے پیچھے ہم دیکھ چکے کہ کس طرح قریش نے مدینہ میں آنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیا, اور غزوہ بدر جیسی ایک مہم سامنے آ گئی. آج ہم پڑھیں گے کہ غزوہ بدر کے نتائج کیا تھے, جو یقیناً بڑے خوبصورت تھے, اور پڑھ کر انشاءاللہ آپ کو اپنے اندر ایک شدت محسوس ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حق کا ساتھ دیتا ہے. وقت کی تاریخ گویا بدر کے چھوٹے سے میدان میں سمٹ آئی تھی, اور اس کو حرکت میں رکھنے والی دو گناہ یعنی دو طرف سے جو قوتیں اپنے اپنے جذبے میں پوری طرح سرشار ہو کر آمنے سامنے تھیں, ایک طرف آبائی مذہب, قدیم رسم و رواج, اپنی قیادت اور معاشی مفاد کا بچاؤ کرنے کے لیے خون کھول رہا تھا, اور دوسری طرف کرنوں کا ایک غول تھا جو مدینہ کے افق سے ظہور کرنے والی صبح نو کو پورے خطہ حیات میں پھیلا دینا چاہتا تھا, اور جس کی نگاہ میں جاہلیت کی تاریکیوں کا سینہ چھیدنا ایک مقدس فریضے کی حیثیت رکھتا تھا. اس معرکے میں باپ اور بیٹے, چچا اور بھتیجے, بھائی اور بھائی, خسر اور داماد خونی رشتوں کو فراموش کر کے اپنے اپنے تصور حیات کے بچاؤ کے لیے آمنے سامنے آ گئے تھے. اس موقع پر انصار نے یہ جانتے ہوئے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے ساتھ دیا کہ وہ پورے عرب کے تیروں اور تلواروں کی زد پر جا رہے ہیں. بڑا کٹھن امتحان تھا جس میں سرخرو ہو کر حضور کے رفقا نے ثابت کر دیا کہ وہ تحریک اسلامی کے سچے اور بے لوس اور جیدار علم بردار ہیں. یہ مارکہ عقل کو حیران کرنے والے نتائج کے اعتبار سے تاریخ انسانی میں اپنی مثال آپ ٹھہرا. کہنا چاہیے کہ ابابیلوں کے ذریعے قدرت نے ایک بار, قدرت کو نا اللہ کے لفظ سے بدل دیں, ابابیلوں کے ذریعے اللہ نے ایک بار پھر ہاتھیوں کے لشکر کو تہس نہس کرا دیا. سمجھ تو آ رہا ہے نا کہ وہاں اللہ نے ابابیلوں سے یہ کام کرا لیا تھا, تو یہاں کیا بڑی بات ہے اگر اس نے تھوڑے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ لوگوں کو پیش کیا, اور دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کس طرح سے معاملہ کیا کہ چھوٹا گروہ جو تھا وہ آگے نکل گیا بڑے گروہ کے. اسلامی فوج کے 22 جانبازوں نے اپنی جانیں اپنے نصب العین پر نچھاور کر کے دکھا دیا کہ وہ عظیم ترین سچائی کے اخلاص مند گواہ ہیں, لیکن دوسری طرف دشمن کے 70 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور اپنا کوئی آدمی ان کے ہاتھ میں دیے بغیر 70 ہی افراد کو جنگی قیدی بنایا, نیز مال غنیمت حاصل کیا عظیم درجے کے روسائے, روسا کہتے ہیں رئیس سے, رئیس کی جمع, روسائے قریش جن میں شیبہ, عتبہ, ابو جہل, ابو البختری, زمع بن الاسود, عاص بن ہشام, امیہ بن خلف, منبہ بن الحجاج جیسی شخصیتیں شامل تھیں. اسلامی تیغ جہاد کا لقمہ ہو گئے, ان کی قیادت کی صفیں غارت ہو گئیں. قریش کی کمر در حقیقت اسی پہلے مارکے میں ٹوٹ گئی, اور ان کا غرور قوت پامال ہو کر رہ گیا, اور اسلامی تحریک یکا یک اپنا سر اونچا کر کے مستقبل کے نئے افق دیکھنے کے قابل ہو گئی. اسی بنا پر قرآن نے مارکہ بدر کے دن کو یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کو نتھار دینے والی کسوٹی تیار قسوٹی قرار دیا. کہاں ہے یہ یوم الفرقان؟ سورت انفال میں اللہ نے اس کو حق اور باطل کے فرق کے طور پر پیش کر دیا. اس مارکے نے در حقیقت فیصلہ کر دیا کہ قریش کے محبوب نظام جاہلیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ اسلام میں سے کس کو زندہ رہنے اور پنپنے کا حق ہے اور کس میں یہ صلاحیت ہے. اسی لیے قرآن نے اپنے تبصرے میں کہا کہ دونوں میں سے اب زندہ اسی کو رہنا ہے جو اپنے زندہ رہنے کے لیے واضح دلیل جواز رکھتی ہو, اور عوام کو بھی ان کا دامن تھامنا ہو وہ دلیل کی بنیاد پر تھامے, پھر چاہیں تو جاہلیت کی خندقیں ہلاکت میں گریں, اور چاہیں تو اسلام کی زندگی افزا, زندگی افروز یعنی زندگی عطا کرنے والی فضاؤں میں پرواز کریں. قیدیوں کو 4000 درہم بعض عمرہ سے زیادہ رقوم لی گئی تھی فدیہ لے کر واپس کر دیا, इस तरह कुरैश पर 2.5 लाख दिरहम से ज़ायद का माली बोझ पड़ गया और इस माशी चोट ने इनकी ताकत को और भी बोझल कर दिया। सियासी हैसियत से बदर के इस गैर मुतवक्के कुरैश के नुक्ते नज़र से यानी गैर मुतवक्के था। नतीजे का असर ये हुआ कि कबाइले अरब की निगाहों में इस्लामी तहरीक और रियासत मदीना का वज़न बढ़ गया और ये कुव्वत उम्मीद गाहे मुस्तकबिल करार पाने के काबिल हो गई। चुनाचे एक नुक्ता नज़र के मुताबिक मदीना के बाद यहूदी कबाइल जंगे बदर के बाद ही मदीना के दस्तूरी माहदे में शरीक हो गए। बकसरत बाशिंदगाने मदीना ईमान लाए। सही मानों में इस्लाम मारकाए बदर के बाद ही एक मुस्लिमाए आम रियासत बना यानी जिसको तस्लीम किया गया, क्योंकि इसने अपना सियासी कुव्वत होना बीच खेत मनवा लिया था। कुरान में क्या सूरत अनफाल आयत 26 26, वस्कुरु इज़न तुम कलील मुस्तदफून फिल अर्दी तखाफून यतखत्तफकुम अन्नास फआवाकुम व अय्यदकुम बिनसरिही व रज़क़कुम मिनत तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। और याद करो वो वक्त जबकि तुम थोड़े थे। सोचिए क्या वक्त था मक्का का। ज़मीन में तुमको बेजोर समझा जाता था, तुम डरते रहते थे कि कहीं लोग तुमको मिटा ना दें। फिर अल्लाह ने तुमको जाए पनाह मुहैया कर दी, अपनी मदद से तुम्हारे हाथ मजबूत किए और तुम्हें अच्छा रिस्क पहुंचाया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। यह आयत दर हकीकत हर दौर की इस्लामी तहरीक के दो बड़े अदवार को नुमायाँ करती है, एक किल्लत ज़ौफ़ और खौफ व ख़तर का दौर और दूसरा जमाओ मजबूती इकतदार फातहाना इकदाम और माशी फलाह का दौर। इस्लाम में जैसे पहला मरहला फितरी और लाजिम है, वैसे ही दूसरा मरहला भी तबई और वाजिब है। इस आगाज का मंतकी अंजाम यही है, लेकिन जो तसव्वुर इस अफराद और अकवाम को मुस्तकिलन अव्वलीन हालत में डाले इसी पर कनात कर दे और आगे के दौरे रोशन की तरफ कोई राह निकाल के ना दे रहा हो, वो नबी अकरम के सिखाए हुए इस्लाम से कहीं ना कहीं इनहिराफ यानी मुंह फेरने वाला, इनहिराफ कर जाने वाला होगा। इस मौके पर कुफार को भी नसीहत के साथ चैलेंज किया गया कि अगर तुम लोग वाज़े फैसला चाहते थे तो लो वो फैसला तुम्हारे सामने आ गया, अब बाज आ जाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, वरना अगर तुम फिर पलट कर इस हमाकत को दोहराओगे तो हम भी तुम्हारा तुम्हारी खबर लेंगे। सूरत अनफाल आयत 19 का तर्जुमा ये। फिर मुस्लिम कौम की तरफ रुख फेर कर कहा गया कि अब कमरे खोल देने का सवाल पैदा नहीं होता, बल्कि अब इन हाथों को शल किए बगैर दम न लो जिन्होंने तेग कारजारी को बेनियाम कर दिया यानी तलवारें खोल दी। अब इनसे जंग जारी रखो यहाँ तक कि फितना बाकी न रहे और दीन पूरे का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए। सूरह अनफाल 39 यानी जंग और फितने की जो आग कुरैश ने दहका दी अब इसे पूरी तरह बुझाए बगैर कारे दीन की तकमील हो नहीं सकती। तो ये थे गज़वाए बदर के नताइज। क्या समझे आप, खुलासा क्या है इनका कि जब भी इस्लाम पर ऐसा कोई वक्त आता है जब अभी लोगों को इस्लाम की असल कुव्वत नहीं नज़र आ रही होती और उस जंग के बाद के जो हालात हैं वो खुलकर इस बात का इजहार होते हैं कि अल्लाह थोड़े से लोगों को भी बड़े बड़े गिरोहों पर गलबा दे सकता है, तो कभी भी असबाब पे ना देखें, रब्बे असबाब पे नज़र रखें। वो कहते हैं ना कि मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही और शायद काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। अच्छी बात है, तैयारी करनी चाहिए। आयद्दु लहुम मस्तता तुम, अल्लाह कहते हैं तैयारी करो बट तैयारी पे भरोसा नहीं करो। तैयारी क्यों करो, ताकि दुश्मनों को पता चले कि मुसलमान सोया हुआ नहीं, क्योंकि दुश्मन तो तैयारियां ही देखता है, उनके पास असला है, उनके पास एटम बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, अच्छा हमला नहीं करते, बस कह लें कि तैयारी कुफार को दिखाने के लिए है, लेकिन असल बात यह है कि मदद अल्लाह की तरफ से है। थोड़ा सा इसमें एक छोटा टॉपिक है वो भी साथ पढ़ेंगे कि दो कुव्वतों का फ़र्क, ये कॉन्सेप्ट हमारे अब क्लियर होने चाहिए कि मुसलमान की कुव्वत किस चीज़ में है और एक काफिर की किस पे है। मार्के बदर को हक ताला ने जिस बिना पर यौमुल फुरकान सूरत अनफाल 41 में करार दिया था, जिस बिना पर कहा कि जा कुमुल फत, लो फैसला तुम्हारे सामने आ गया सूरत अनफाल आयत 19, जिस बिना पर सूरह आले इमरान में फरमाया गया कि कद कान अलकुम आयतुन फी फियतैन तक़ता, तुम्हारे लिए निशानी है दो लश्करों के तसादम में, आले इमरान 13 में। फिर तवज्जो दिलाई गई इन नफी ज़ालिक अल इबरतुल लिल अबसार, इस वाक्य में आंख रखने वालों के लिए नसीहत है, दीदा बीना रखने वालों के लिए नसीहत है, आल इमरान 13। उधर हकीकत नज़रियाती अखलाकी फ़र्क है जो दोनों कुव्वतों के बिल मुकाबिल यानी एक दूसरे के मुकाबले में आने पर पूरी तरह वाज़े हो गया। एक लश्कर दुनियावी मकासद और अगराज और कबाइल और नस्ली तासुबात को ऊपर रख कर महज अल्लाह की राह में नौ इंसानी के अजीम फलाह के लिए उठता है, ये कौन सा गिरोह था? नबी सल्लम का गिरोह, मुसलमानों का गिरोह। दूसरा लश्कर अपनी सरदारी, अपने नस्ली गुरूर, अपने तिजारती मुफाद और अपने अंधे जज्बात की खातिर आगे बढ़ता है। वो लश्कर खुदा के सामने आजजी करता हुआ नमाजों और रुको सुजूद में मगन और रजा इलाही पर निगाहें जमाए मैदान में उतरता है। ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि मुसलमान मोमिन मुजाहिद जो थे वो मैदान जंग में भी अल्लाह को नहीं भूलते थे, नमाज और अस्कार और दुआएं उनका शार था। ये लश्कर दावतें और ज़ियाफ़तें करता, शराबों के दौर चलाता, मौसीकी की तानों में बहकता, रक्कासाओं की बदनी हरकात से दिल बहलाता सामने आता है। वो लश्कर अफराद की तादाद और असलहे की कमी के साथ ईमान, वहदत और नज़्म और किरदार के लिहाज से ज़्यादा ऊंची कुव्वतों से आरास्ता है। यह लश्कर तादाद में बड़ा और सामान के लिहाज से भारी है मगर अखलाकी कुव्वत के लिहाज से नहायत कमज़ोर, बोदा कहते हैं कमज़ोर को। और फिर कुदरत दोनों के दरमियान फतह और शिकस्त का इंतहाई बयीन, बयीन कहते हैं वाज़े, फैसला करती है कि अंधों को भी दिखाई देने लगे कि मिटने वाली कुव्वत कौन सी है और फलने फूलने वाली कौन सी। तो फिर क्या हमें आज के दौर में इस बात का रोना रोना चाहिए कि मुसलमानों के पास हथियार नहीं, असलिया नहीं? नहीं, सब भी होगा लेकिन वो हाथ नहीं है जो अल्लाह के आलम को पकड़ कर खड़े हो। तैयारी करके बाद में अल्लाह के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और ये दोनों कुव्वतों का जो फ़र्क है इसको चंद वाक़यात से देखेंगे तो और बात समझ आएगी। अबू हुज़ैफ़ा बिन यमान और अबू हुसैल दो मुस्लिम नौजवान इस ज़माने में मक्का से आए। रास्ते में कुफार ने रोका कि हम तुमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए न जाने देंगे। उन्होंने अदम शिरकत का वादा करके निजात हासिल कर ली। हुजूर की खिदमत में आकर सारा वाक्या सुनाया। किल्लत तादाद के साथ ये नाजुक मौका, जबकि एक चींटी की भी मदद मिलती तो गिरां बहा महसूस होती, यानी थोड़ी थोड़ी चीज़ों की भी कदर थी उस वक़्त, अहमियत थी और ज़रूरत थी। आपने फैसला फरमाया कि तुमने जो वादा कर लिए इसे लाजमन पूरा करो, हमारी मदद खुद अल्लाह फरमाएगा। तारीख के पास ऐसी जरी यानी गोल्डन मिसालें कितनी होंगी, यानी इतनी ज़रूरत थी उस वक़्त भी, लेकिन आपने अपने इन साथियों से कहा कि वादा ना तोड़ो। कितनी हौसले की बात है, हम कहते लो काफिर हैं, इन्होंने मिस्ताया, हमें दुखाया, नहीं, आपने कहा जाओ तुम, अल्लाह अपने काम को खुद लेगा। कुफार मकतूलीन की लाशों को अपने घड़ा खुदवा कर दफन कराया, किसी लाश की बेहरमती नहीं हुई। माल गनीमत के बारे में आम तरीका ये था कि जो कुछ जिसके हाथ लग गया वो उसका हो जाता। इस कायदे की वजह से फतह के आसार पैदा होते, हड़बूंग और हाथापाई मच जाती। लेकिन कुरान ने माल गनीमत का नया जाबता मुकर्रर किया जिसके लिए इस असासी यानी बुनियादी तसव्वुर ये दिया गया कि अलनफालुलिल्लाहि वलिर्रसूली, यानी माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का, पहली आयत अनफाल की, और इसको इस्तेमाल करना और इसे तकसीम करना इस्लामी हुकूमत का काम है। इस नए जाब्ते की बिना पर पूरा माल गनीमत पाई पाई और रत्ती रत्ती सालारे लश्कर के कदमों में डाल दिया जाने लगा। और फिर इसमें से पांचवा हिस्सा रियासत की इज्तमाई ज़रूरियात के लिए रोक कर बकिया को सिपाहियों पर तकसीम कर दिया जाता। जहली निज़ाम में जंगी कैदी फातह के रहमो करम पर होते और इन पर जुल्म तोड़े जाते, इनसे बदसलूकी की जाती और इनको ग़ुलामी में डाल दिया जाता। और आज के दौरे तहजीब में भी जंगी कैदियों के साथ जो वहशियाना सलूक रवाज रखा जाता है वो वाज़े है। लेकिन हजूर ने जंगी कैदियों को नया मर्तबा दिया, हिदायत दी गई थी कि कैदियों को नहायत आराम से रखा जाए। बाद साहबा ने इसकी तामील में खुद खजूरें खाकर अपने चार्ज में आए हुए कैदियों को पेट भर अच्छा खाना खिलाया। खुद एक बदरी कैदी अबू अजीज़ मुसब बिन उमैर के जो भाई थे उनका बयान है कि जिन अंसारियों के यहाँ मुझे रखा गया था वो खुद खजूरों पर गुजर करते और मुझे अच्छा खाना ला कर देते। इस सलूक की वजह से मैं सख्त शर्मसार होता। जिन कैदियों के पास लिबास कम था इनको कपड़े दिए गए। हज़रत अब्बास के बदन पर लंबे कद की वजह से कोई कुर्ता पूरा न उतरता था, इसलिए इनके लिए अब्दुल्ला बिन उबई ने कुर्ता भिजवाया। इसी एहसान के बदले में हजूर ने इसके कफन के लिए अपना कुर्ता अता किया था। कैदियों में सुहैल बिन अमर भी था जो अपना पूरा जोर फसाहत हजूर के खिलाफ तकरीर करने में सर्व करता। हज़रत उमर ने मशवरा दिया कि इसके सामने के दांत उखड़वा दिए जाएं ताकि आइंदा ये जोश खिताबत ना दिखा सके। कोई और होता तो अपने एक बेबस कैदी के साथ बदतरीन सलूक करने में भी तामुल ना करता, लेकिन हजूर ने फरमाया कि अगर मैं इसके किसी हिस्से बदन को बिगाड़ूँ, इसे मुसला कहते थे इस्तेलाह में, तो मेरे नबी होने के बावजूद अल्लाह इसकी सज़ा के तौर पर मेरे भी इस हिस्से को बिगाड़ेगा। यानी आपने कैदियों के साथ, जिसको आप आज के दौर में कह लें कि टॉर्चर नहीं किया, बेहुरमती नहीं की लाशों की। फ़ातह कुव्वत बिलमूम नशे पिंदार में बदमस्त होकर नहायत गैर संजीदा हो जाया करती है। यानी फ़तह का नशा ही बड़ा होता है, लेकिन हजूर और आपके साथियों में ऐसे ओछेपन की कोई झलक नहीं दिखती। यहाँ तक कि जब अबू जहल की हलाकत की खबर मिलती है और इसका सर आपके सामने लाया जाता है, तो इस वक्त अल्लाह की तारीफ़ के कलेमात आपकी ज़ुबान पर जारी होते हैं। मदीना की तरफ फातह फ़ौज का मार्च होता है, तो इस वक्त भी ना कोई बैंड बाजे का इंतज़ाम होता है और ना मदीना पहुँच कर कोई जश्न मुसरत मनाया जाता है। फ़क्त एक जज्बा शुक्र दिलों पर तारी होता है, जिसकी बुनियाद इस एहसास पर है कि यह फ़तह अल्लाह का इनाम है, बजाय इसके कि मुस्लिम सिपाही अपने ज़ोम क़ुव्वत का शिकार हो जाए। इनका कमांडर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयात के आईने में इनको रही सही जहनी और अखलाकी कमज़ोरियों की तरफ मुतवज्जे करता है। इनके जंगी किरदार पर नाक़िदाना यानी तनकीदी तबसरा करके ना मतलूब पहलुओं को नुमाया करता है। इस तरह इनमें मज़ीद तामीर व इसलाह के लिए तहरीक पैदा की जाती है। इस बहस में अगरचे गुंजाइश इतनी नहीं कि सारी जंगी कार्रवाइयों पर एक फसल में इतनी तफसील से काम लिया जाए, लेकिन हमने अव्वलिन मार्के पर इतनी तवज्जो इसलिए सर्फ की कि कारी इसके ज़रिए वह नुक्ता नज़र जान लें जिसके बग़ैर बाद के जंगी वाक़ियात को समझना मुमकिन नहीं, और बाकी जंगें इंशाल्लाह मुख्तसर होंगी। आपको वैसे भी पता है कि ग़ज़वा बदर ही तो एक क्राइटेरियन था, पहली चीज़ समझ आ जाए तो फिर अल्लाह की सुन्नत भी समझ आती है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हम कदरे डिटेल से पढ़ रहे हैं, और इसको पढ़ने के बाद तो दिल में और भी इस बात का यकीन आ जाता है कि अन्नसरु मिनल्लाह, मदद अल्लाह की तरफ से है। खुलासा क्या निकला कि आज के मुसलमान को अल्लाह की बात माननी है, अल्लाह का बंदा बनना है, अल्लाह पे नज़रें लगानी हैं, अल्लाह के दिए हुए इसबाब को इस्तेमाल करके अल्लाह के दीन का दिफा करना है। जब दीन को आम करेंगे, जब इल्मी चीज़ों को आम करेंगे, तो बाकी चीज़ें फिर ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होती। कुफर को ख़त्म करना है, काफिर को नहीं। काफिर पे तो बहुत बाद में हाथ उठता है, इस्लाम तो हर लम्हे कुफर के ख़ात्मे की बातें करता है। अल्लाह ताला मुझे आपको इस रास्ते में इस्तेमाल करे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।